पल्लवी ने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, वैसे भी हमारा बेटा तो है ही इतना अच्छा, कोई भी राजवंशी परिवार हमें मना नहीं करेगा। इतना बोलकर पल्लवी अभिनव की तरफ देखकर मुस्कुराई। तभी अभिनव ने उन्हें वहीं रोकते हुए कहा, एक मिनट, ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो? देखो, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं कोई शादीवादी नहीं करने वाला। पहले ही तुम लोगों के चक्कर में यहाँ आकर फंस गया हूँ और यहाँ पर मुझे जेल जैसी फीलिंग आ रही है, और अब तुम लोग यहाँ पर मेरी शादी करने का भी बंदोबस्त कर रहे हो। हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं बेटा, पल्लवी ने कहा। इतना बोलकर वो नरेंद्र की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझे यहाँ क्या बोलकर लाए थे, याद है ना तुम्हें, या फिर मैं याद दिलाऊं? वो कुछ और बोलने जा ही रहा था कि तभी नरेंद्र ने उसे चुप करवाते हुए कहा, चुप रहिए आप, पहले ही हम बहुत परेशान हैं और आप ऊपर से बेवजह के नखरे दिखा रहे हैं। शादी करने में भला क्या परेशानी है, हर राजवंशी को शादी तो करनी ही होती है। इतना बोलकर नरेंद्र ने उसे डांट दिया और चुप रहने का इशारा किया। उसने नरेंद्र की बात सुनकर पल्लवी की तरफ देखा, फिर वो चुप हो गया। लेकिन तभी उसने अपने मन में कहा, मैं इन लोगों की पसंद से शादी हरगिज़ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो शादी नहीं करने वाला। मुझे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी शादीवादी करके, अभी मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। अभिनव ये सारी बातें अपने मन में ही बोल रहा था, वहीं नरेंद्र ने पल्लवी की तरफ देखकर कहा, पल्लवी, आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। इतना बोलकर वो पल्लवी को कुछ समझाने लगा। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु इस समय अपनी कार में बैठा हुआ था। उसने कार ड्राइव करते हुए कहा, कल तो इप्सिता के इडियट बॉस की वजह से हम कोई बात ही नहीं कर पाए, उसके बाद से इप्सिता ने भी मेरे किसी मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। एक काम करता हूँ, आज जाकर उसके ऑफिस में ही मिल लेता हूँ, वहाँ रहूँगा तो आराम से बात भी हो जाएगी, और इप्सिता के बॉस को भी सबक सिखाऊंगा। अगर आज उसने मेरे और इप्सिता के बीच आने की कोशिश की तो हम उससे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसके बाद इप्सिता पूरा सच जानने की हकदार है, आज हम उन्हें पूरी सच्चाई बताकर ही रहेंगे। अभिमन्यु इप्सिता के बारे में ही सोच रहा था। ड्राइव करते करते थोड़ी ही देर में वो इप्सिता के ऑफिस पहुँच गया। अभिमन्यु ने आज सी ग्रीन कलर की शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना हुआ था। उसने ब्लैक कलर की जीन्स के साथ उसे पेयर किया था। अभिमन्यु के जूते काफी स्टाइलिश थे। उसके हाथ में उसकी फेवरेट वॉच थी। अभिमन्यु ने अपनी आंखों पर अपना लकी सनग्लास लगाया हुआ था। वो हमेशा की तरह बहुत ही हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन साफ नजर आ रही थी, और वो टेंशन थी सिर्फ इप्सिता की वजह से ही थी। अभिमन्यु ने जैसे ही कार पार्क की वो सीधे इप्सिता के स्टूडियो पहुंचा। स्टूडियो में पहुंचते ही उसने सामने रिसेप्शनिस्ट डेस्क पर एक लड़की को बैठी देखा। वो रिसेप्शनिस्ट अभिमन्यु को देखा। अभिमन्यु इतना हैंडसम लग रहा था कि वो बस उसे देखती ही रह गई। अभिमन्यु रिसेप्शनिस्ट के पास आकर बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं मॉडलिंग फोटोग्राफी के लिए हमें किस फ्लोर पर जाना होगा? रिसेप्शनिस्ट अभिमन्यु को देखकर शॉक थी। अभिमन्यु इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था कि वो लड़की अपनी नजरें अभिमन्यु से नहीं हटा पा रही थी। अभिमन्यु ने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो उसने कुछ दिया ही नहीं, वो बस अपना मुंह खोले अभिमन्यु को ही देख रही थी। अभिमन्यु ने उसके चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो, एक्सक्यूज मी मिस, हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या आपने हमारी बात सुनी? फोटोशूट किस फ्लोर पर होता है? रिसेप्शनिस्ट अभिमन्यु के हाथ हिलाने से होश में आई। उसने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, थर्ड फ्लोर पर। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर अभिमन्यु सीधे सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। तभी रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोकते हुए कहा, हेलो मिस्टर, लिफ्ट उधर है, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? अभिमन्यु उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसने उस लड़की की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। रिसेप्शनिस्ट अभिमन्यु को इस तरह तेजी से सीढ़ियों की तरफ जाते देखकर बोली, यार कितना हैंडसम मॉडल था, कम से कम इसका नाम भी पूछे थी। वैसे न्यू मॉडल था भी या नहीं हमने तो उससे ये भी नहीं पूछा, कहीं किसी से मिलने तो नहीं आया था, हमने उसे ऐसे ही जाने दिया। उस रिसेप्शनिस्ट के दिमाग में एक बार ख्याल आया, तभी उसने अपना सिर नामे हिलाकर याद करते हुए कहा, अरे नहीं, हम भी क्या सोच रहे हैं, इतना हैंडसम लड़का, अगर वो मॉडलिंग फ्लोर के बारे में पूछ रहा था तो इसका मतलब उसे अपना शूट ही करवाना होगा, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। वैसे भी हो ना हो वो पक्का कोई मॉडल ही है, वैसे भी मैंने सुना है कि मॉडल काफी ज्यादा फिटनेस फ्रीक होते हैं, तभी तो उसने लिफ्ट की बजाय सीढ़ियाँ ली। वो तो दिखने में भी कितना हैंडसम लग रहा था, उसकी बॉडी भी अच्छी खासी थी, वो पक्का कोई मॉडल है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आजकल भगवान जी काफी हैंडसम लड़के बनाने लगे हैं। वो रिसेप्शनिस्ट यही सारी बातें सोच रही थी, वहीं अभिमन्यु सीढ़ियां चढ़ता हुआ थर्ड फ्लोर पर पहुंचा। उसने थर्ड फ्लोर पर पहुंचते ही देखा कि वहां काफी सारे फोटोशूट चल रहे थे। अभिमन्यु चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रहा था, लेकिन उसे कहीं पर भी इप्सिता नजर नहीं आ रही थी। अभिमन्यु ने चारों तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, हमें तो लग रहा था ये स्टूडियो छोटा मोटा स्टूडियो होगा, लेकिन ये तो काफी बड़ा है, यहाँ पर कितने सारे मॉडल्स हैं और इतने सारे फोटोशूट चल रहे हैं, पता नहीं हम इप्सिता को यहाँ पर कैसे ढूंढेंगे। अभिमन्यु यही सारी बातें सोच ही रहा था, तभी उसे इप्सिता नजर आई। उसने काफी स्टाइलिश घेर लाल शिमरी गाउन पहन रखा था। वो एक डार्क ब्लैक वॉल से टेक लगाकर खड़ी थी। ध्रुव उसके सामने खड़े होकर उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता को देखा वो वहीं अपनी जगह पर रुक गया और इप्सिता के खूबसूरत चेहरे को निहारने लगा। इप्सिता ने काफी प्रोफेशनल मॉडल वाला मेकअप किया हुआ था। नॉर्मली इप्सिता इतना मेकअप नहीं करती थी, लेकिन अभी जब वो अपना फोटोशूट करवा रही थी तो उसने बाकी सारी मॉडल की तरह काफी अच्छा मेकअप किया हुआ था। कपड़ों के साथ साथ इप्सिता पर वो मेकअप भी काफी ज्यादा सूट कर रहा था। इप्सिता एक के बाद एक पोज देती जा रही थी। तभी ध्रुव ने इप्सिता के पास आकर उसके बालों को ठीक किया और दोबारा उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगा। जब ध्रुव ने इप्सिता के बालों को छुआ तो अभिमन्यु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी मुट्ठी बांधकर आगे बढ़ते हुए खुद से बोला, हाउ डेयर ही, इसने मेरी इप्सिता को टच कैसे किया। वो आगे बढ़कर ध्रुव पर चिल्लाने ही वाला था तभी उसने खुद को रोकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं हम, इप्सिता यहाँ पर अपना काम कर रही है, हम है कि बेकार में ही जेलस हो रहे हैं, वैसे भी उसने सिर्फ इप्सिता के बाल ही तो छुए हैं। अभिमन्यु सारी बातें बोलकर खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहा था तभी इप्सिता का शूट खत्म हुआ। ध्रुव ने इप्सिता की तारीफ करते हुए कहा, ग्रेट, सारे पिक्चर्स बहुत अच्छे क्लिक हुए हैं, अब हमारा बस एक लास्ट फोटोशूट बचा है, जाओ तुम जल्दी से लास्ट ड्रेस भी चेंज करके आओ, हम उसे भी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। इप्सिता ने चेयर पर आराम से बैठकर अपना सिर पकड़ लिया और पानी पीते हुए बोली, यार मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, क्या हम ये शूट कल करें। ध्रुव ने जैसे ही इप्सिता की ये बात सुनी वो उसके पास आते हुए बोला, क्या बात है, जब से आई हो तब से ही तुम मुझे काफी ज्यादा डिस्टर्ब लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी चीज के बारे में लगातार सोच रही हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, हम ये फोटोशूट कल कर लेंगे। इतना बोलकर ध्रुव अपने कैमरे को ट्राईपॉड से हटाने लगा। इप्सिता ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब क्या बताऊं मैं ध्रुव को, उसे तो सारी बातें बता भी नहीं सकती। इप्सिता ये सब सोच ही रही थी कि तभी अभिमन्यु आगे बढ़ा और इप्सिता के सामने आकर बोला, खत्म हो गया आपका आज का फोटोशूट। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु को वहां देखा उसकी सांसें थम गईं। तभी ध्रुव ने पीछे मुड़कर अभिमन्यु की तरफ देखा।
इप्सिता अभिमन्यु के पास आई और उसने कहा, अभिमन्यु आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इप्सिता काफी ज्यादा शॉक्ड थी, अभिमन्यु को यहाँ देखकर वो घबरा भी गई थी। ध्रुव ने जैसे ही इप्सिता के मुंह से अभिमन्यु का नाम सुना वो अभिमन्यु को घूरते हुए देखने लगा। इप्सिता जल्दी से आगे बढ़ी, उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहा, आपसे किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए, जाइए यहाँ से। इप्सिता को इस तरह घबराते देखकर अभिमन्यु ने कहा, अरे आपको इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ आपसे बात करने के लिए आए हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए शूटिंग एरिया से बाहर ले आई। चेंजिंग रूम के बाहर उसने अभिमन्यु को घूरते हुए देखकर कहा, ये हमारा स्टूडियो है, आप यहाँ पर ऐसे नहीं आ सकते। इतना बोलकर वो उसे देखने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे वो अभिमन्यु को सबकी नज़रों से बचाना चाहती हो। अभिमन्यु ने उसे शांत करते हुए कहा, इप्सिता आप इतना क्यों घबरा रही हैं, वैसे भी हमें आपसे बात करनी थी, अगर हम यहाँ नहीं आते तो फिर कहाँ बात करते। इप्सिता ने उसी तरह घबराते हुए कहा, अभी आप फिलहाल यहाँ से जाइए अभिमन्यु, आपका यहाँ पर होना सही नहीं है, अगर अथर्व सर ने आपको देख लिया तो। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखता है तो देख ले, आई डोंट केयर। अभिमन्यु की ये बात सुनकर इप्सिता ने कहा, हाँ हम जानते हैं आप तो वैसे भी किसी चीज़ की फिक्र नहीं करते और न ही किसी की केयर करते हैं, आप तो बस हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, आज भी अपने बारे में ही सोचेंगे, अगर हमारे बारे में क्यों सोचने लगे, उस दिन भी आपने वही किया था, आज भी आप वही कर रहे हैं। इतना बोलकर इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा फिर सीधे लिफ्ट की तरफ जाने लगी। अभिमन्यु इप्सिता के पीछे पीछे आते हुए बोला, नहीं इप्सिता हमें गलत मत समझिए, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था, आप एक मिनट रुकिए, हमारी बात तो सुनिए, हम क्या कह रहे हैं। अभिमन्यु इप्सिता के पीछे पीछे जा रहा था तभी इप्सिता ने लिफ्ट का बटन दबाया, तुरंत ही लिफ्ट खुल गई। अभिमन्यु भागता हुआ इप्सिता के पास आया और उसने देखा कि वो लिफ्ट के अंदर ही जा रही थी। अभिमन्यु लिफ्ट से आता जाता नहीं था अपने डर की वजह से, इसलिए वो अंदर आने से पहले थोड़ा सा झिझक रहा था, लेकिन फिर जैसे ही उसने देखा कि लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने वाला था तो फिर ना चाहते हुए भी इप्सिता के पीछे उस लिफ्ट के अंदर आ गया। अभिमन्यु ने इप्सिता के पीछे आते हुए कहा, इप्सिता एक मिनट रुकिए, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रही हैं, उस दिन हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सलामती के लिए किया, अगर हम उस दिन आपको मंडप में छोड़कर ना जाते तो आपकी जान चली जाती। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखने लगी। उसने कन्फ्यूज होते हुए कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं, हमारी जान को खतरा था लेकिन किससे।